ओम शांति। हम सभी के बीच में रूहानी मूर्ति, दिव्य मूर्ति, आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी उपस्थित हैं। हम एक हाथ की अव्यक्त ताली से दीदी जी का अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छे विषय को लेकर के दीदी आए हैं। जैसी भूमि में रहते हैं वैसा ही विषय आज दीदी जी का है। प्रयागराज हम सभी ने सुना है, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में जहां होता है, ऐसी तपस्या की भूमि, साधु संतों और महंतों की भूमि के अंदर रह करके 40 से भी अधिक वर्षों तक जिन्होंने अपनी सेवाएं देकर के वहां के यज्ञ को फूला फाला और बहुत अच्छा खिलाया है, ऐसी सेवा की मूर्ति आज हम सब के बीच में है। हम जोरदार तालियों से दीदी जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दीदी को आप सभी ने देखा होगा वक्ता के रूप में, लेकिन मैंने दीदी को हमेशा देखा हुआ है नम्रता और मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी सबके साथ सरल होकर के चलने की कला वो आपसे हम सीख रहे हैं। दीदी, आप वो व्यक्तित्व हैं जिसके द्वारा बाबा ने गीत, कविताएं, लेख और बहुत ही अच्छी तरह से चिंतन का खजाना अनेकों तक पहुंचाया है। मंच संचालन की कुशलता वो आपकी बेमिसाल है। ऐसी दीदी जी आज हम सभी को देही अभिमानी अवस्था अपनी कैसे बनाएं, उसके कुछ विधि विधान अपने अनुभव युक्त वाणी से सुनाएंगे आदरणीय मनोरमा दीदी जी।
ओम शांति। अभी आप गहन तपस्या कर रहे थे और हमारी तृप्ति बहन आपको बहुत अच्छे संकल्प दे रही थी। मैंने देखा कि वो आपको वतन तक ले जा रही हैं और आप भी पूरी तरह तैयार वतन में जाने के लिए। निसंदेह वतन में शरीर नहीं जाएगा, जाएगा? शरीर नहीं जाएगा। वतन में जाने के लिए हमको इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम कहें, वस्त्र कहें, रथ कहें, इससे भिन्न होना पड़ेगा। और आज का विषय यही है। और आज का क्या, मैं अगर ये कहना चाहूं कि यज्ञ के आदि से और आज तक का विषय यही है। पिछले मास की पूरी वाणियों में बाबा ने साकार में भी देह अभिमान छोड़ो और देही अभिमानी बनो पे सारी वाणियां चलाई हैं। आप फिर पलट के देख लो। ये भी कहा है कि गीता का पहला पाठ, मैं आत्मा, और अंतिम पाठ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है। यज्ञ जब से स्टार्ट हुआ हमने यही का कहरा पढ़ा है कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। बावजूद इसके पढ़ने के हम कहां स्लिप कर जाते हैं, कहां हमारे हाथ से आत्मा का दामन छूट जाता है और हम देह बन जाते हैं, वस्त्र बन जाते हैं, हाँ रथ बन जाते हैं रथी की जगह, क्या नहीं होता विचार करके देखिए। आप युगल मूरत हैं, आप उदाहरण मूरत हैं। आज आपके ऊपर सारी संस्था को बहुत नाज है। अगर किसी मोर्चे पर हम सीना ठोक के कुछ कह सकते हैं तो उसके आधार आप हैं। और हम बड़े फक्र से कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने परिवार हैं जिनकी दृष्टि पवित्र, जिनकी वृत्ति पवित्र, जिनकी कृति पवित्र। अरे अजमा लो उनको किसी भी मोड़ पे। इसी डायमंड हॉल में हमारे परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी ने गीता सम्मेलन चल रहा था, संतों को आपके सम्मान में खड़ा किया और कहा कि ये जो बैठे हैं सामने ये ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं। जैसे ये आपका सम्मान करते हैं, सभी संतजनों से कहा आप भी इनका सम्मान करो। खड़े हुए लोग, तो आप जैसी तपस्वी मूरत को अब मैं ये कहूं कि चलो पहला पाठ पढ़ें, चलेगा पहला पाठ पढ़ें? लेकिन क्या वजह है जो ये पहला पाठ हमारा पक्का नहीं होता? रियली हम जिगर से चाहते हैं कि हम आत्मिक स्वरूप में रहें। चाहते हैं ना आप? नहीं चाहते? चाहते हैं। ये आत्मिक भाव जिस दिन हमारा पक्का हो जाता है उस दिन हमारे यहाँ प्रेम की सरिता प्रवाहित होने लगती है। उस दिन हमारी दृष्टि में प्रेम, वाणी में प्रेम, कर्म में प्रेम, वृत्ति में प्रेम। समझो तो सही कि मैं आत्मा हूं, अपनी चेतना के निज स्वरूप को समझना। जानना नहीं, जान तो आप पहले ही दिन गए थे। जिस दिन कोर्स हुआ था ना फर्स्ट डे, तो दीदी ने क्या बताया था? मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, मैं मेरे से भिन्न हूं, मेरे गुण विशेष हैं, मेरा धाम विशेष है, यही सब बताया था ना। तो जान तो आप बहुत पहले गए थे जिस दिन आपकी दीदी ने प्रथम पाठ पढ़ाया था। आपने उसी दिन जान लिया था कि आप आत्मा हैं। लेकिन जानने के साथ मानना और जीवन की दिनचर्या में शरीक हो जाना। हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, बहुत से भाई ये सोचते होंगे कहना सुनना बड़ा आसान है। अरे दीदी मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, वहाँ रोज अपराधियों से पाला पड़ता है, मैं कहूँ भाई मैं आत्मा हूँ तब तक तो वो गोली चला देगा। हाँ कहेगा जाओ ऊपर, आत्मा हो तो क्या जरूरत यहाँ रहने की। बोला हमारा जॉब ही ऐसा है कि हमको आँख दिखानी पड़ती है। कई बार हमारे भाई सोचते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर थोड़ा सा दिखाएंगे नहीं तो सब लूज हो जाएगा, ये कोई डिसिप्लिन में रहेंगे ही नहीं, ये कोई समय से आएंगे ही नहीं, सोचते हैं ना ऐसा नहीं? और इसके लिए हमको देह में आना पड़ता है, हम क्या करें? ये कह करके हम अपना बचाव करते हैं। सच पूछिए, ये कह करके हम बचाव करते हैं कि हमारी पोस्ट ऐसी है, हमारी ड्यूटी ऐसी है, हमारा पार्ट ऐसा है, क्या करें, हमको थोड़ा बहुत तो बॉडी कॉन्शियस होना ही पड़ता है। तो बाबा ये नहीं कहता कि देह छोड़ दो, कहता है? बाबा कहता है इसी शरीर से क्या करना है, संगम युग पर अंतिम पलों तक पुरुषार्थ करना। इसी शरीर से 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकता करने, इसी शरीर से हमको योग लगाना। एक और कहता है सब छोड़ दो, देह सहित देह के संबंधों को हे अर्जुन छोड़ करके मां में कम याद करो। तो एक और की शिक्षा है माम एकम शरणम ब्रज। दूसरी ओर भगवान कह देता है एक तोड़ निभाओ, गृहस्थ में रह रहे हो ना, तोड़ निभाओ। तो या तो हम निभाने में लग जाते हैं, देखना आप कमी कहां पड़ती है, या तो पूरी तरह से सांसारिक जीवन को निर्वहन करने में और निभाने में लग जाते हैं, और या पूरी तरह से तोड़ देने में लग जाते हैं। भगवान ने हमको बीच में रखा है, तोड़ निभाओ, निभाओ भी और तोड़ भी दो। तो तोड़ने का मतलब केवल मानसिक रूप से जो हमारे सूक्ष्म तार जुड़े हुए हैं उन्हें तोड़ दो, कुछ और नहीं तोड़ना है। अगर हमको तोड़ना ही है तो मानसिक लगाव के जो तंतु हैं उनको तोड़ना है। पहली बात तो ये, अभिमान आता क्यों है? ये सोचो कि देहभान अभिमान तो बहुत कोसों दूर की चीज हो गई। जो भी ब्रह्मा कुमार बन गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, अभिमान उनसे कोसों दूर चला गया। क्योंकि अभिमान वो विकार है, जब हम उस प्लेटफॉर्म से गिरते हैं तो बाबा कहता है हड्डी गुड्डी टूट जाती है, बहुत नुकसान होता है। वो तो नुकसान खत्म, वो अभिमान वाली बात नहीं। अहंकार खत्म हो गया लेकिन देह अभिमान अभी भी आ जाता, अभिमान नहीं है लेकिन देह अभिमान है। और हमारा जो दिन गुजरता है वो देह अभिमान में गुजरता है। आप जब जब दर्पण देखते हो तो पर्सनालिटी का अभिमान, तैयार होके खड़े होते हो लगता है कि मैं भी कोई चीज हूं। कहीं कोई मीटिंग अटेंड करते हो और उसमें आपकी ही बात सर्वोपरि रखी जाए, इस ढंग से रखते हो, और जब पास हो जाती है बहुमत से तो कॉलर ऊंचा करके कहते देखा है, अरे मैं जानता हूं किस टेक्निक से पास होगी ये चीज। तो टेक्निकल होने का अभिमान। कभी कभी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं समाज में वो कहते हैं इस काम को कैसे किया जाएगा, प्लानिंग तो कर ली उन्होंने, अब मुझे देंगे तब करूंगा, और जब चार बार कहेंगे तब करूंगा, क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। तो कभी टेक्निकल का, कभी प्लानिंग का, कभी अपनी एजुकेशन का, कभी अपनी पर्सनालिटी का, कभी अपने वैभव का, कभी अपनी पूंजी का, कभी अपनी प्रॉपर्टी का, कभी गाड़ी बंगले का, मतलब हमारे अंदर अभी भी देह अभिमान व्याप्त है। और ये देह अभिमान की निशानी ये है कि जब हमें कभी कोई कुछ कह देता है तो हमारे मुंह से छूटते ही निकलता है क्यों? उसने ये कहने की हिम्मत की कैसे की? क्या मैं ही मिला था उन्हें इतना कमजोर? ऐसा होता है ना, बहनों में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो जब चुभन हो किसी बात की, जब चुभन हो किसी व्यवहार की, और जब हमारे मुंह से क्या क्यों निकलने लगता है, तो पक्का कर लो कि अभी देह अभिमान है। हमारी बड़ी दीदियां मीटिंग करती हैं और कहती हैं भाई इतना बड़ा प्रोग्राम है, करना है, आप लोग बताइए कैसे क्या होगा। हम उस मीटिंग में हाजिर होते हैं, शांत बैठे रहते हैं, पड़ोसी हमको धीरे धीरे ठुमका लगाता है कि बोल भाई, अरे दो गाड़ी हैं, एक गाड़ी ड्राइवर तो दे ही सकता है ना कार्यक्रम में। लेकिन हम बगल वाले को भी हाथ दबा के कहते चुप रहो, बहन जी को भी मालूम है, हाँ कहेंगी तो कर दूंगा। बहन जी को मालूम नहीं है क्या मेरे पास दो गाड़ी हैं, अभी कहा ही नहीं है, मैं आगे आगे कूदने लग जाऊं। तो ये रोक कौन रहा है? मेरा अहम रोक रहा है, देह अभिमान रोक रहा है, और मैं खुल के ऑफर भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं ये कर सकता हूं। मेरी बहनें भी ऐसा करती हैं कि जब खास तौर से कहा जाता है कि आप ये संभाल लो, बहन जी देखेंगे उन्हीं दिनों मेहमान आने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला, बोला नहीं भाई तुम्हारे अलावा कौन संभालेगा, सोचो कुछ एडजस्ट करो, बोला देखते हैं करेंगे कुछ। तो ये जो चीजें होती हैं ये इस बात की प्रतीक हैं कि हमारे अंदर अभी भी कहीं अभिमान है, और जो देहवान है वो तीसरी श्रेणी में सबसे छोटा भाई है। जब हमको गर्म और ठंडे का एहसास होने लग जाए कि बड़ा मुश्किल है ये काम, हम नहीं कर सकते, वहां बहुत गर्म, कभी हम कहते हैं बहुत ठंडा है हम नहीं जाएंगे वहां, जुकाम हो जाएगा, कभी दीदियां कहती हैं कुछ करने को तो हम कहते हैं बहन होके आप हमसे इस काम की उम्मीद करती हैं, किसी को भाई को दीजिए ना, और भाई को अगर कहा जाए कि चलो भाई किचन में लग जाओ, बोला अरे कमाल है, क्या दीदियां नहीं हैं जो आप मुझे कह रही हैं किचन में लग जाओ। तो नर और नारी होने का भान, गर्मी सर्दी का भान, नाजुक कोमल और कठोर का भान, ये देह भान है। और बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं कि हम इस तरह के सब भान, देह अभिमान, हाँ? और अभिमान तीनों से परे क्या हो जाए, देही अभिमानी हो जाए। जो कुछ इस जन्म में मिला है उसके लिए हमें इतना नाज है, विचार कीजिए। तो जो सतयुग और त्रेता में मिलने वाला है जरा उस पर देखिए कितना नाज होना चाहिए। इस अंतिम जन्म की अंतिम घड़ी में जो उपलब्धि है उस पर हमको नाज है। तो सृष्टि के आदि में सतयुग में अरे क्या नहीं क्या मिला था आपको, जरा वो लेंस सीधा कीजिए कैमरे का कि सोने के महलों में रह रहे थे, सोने की थालियों में भोजन कर रहे थे, क्या वैभव था, हर एक के पास एक एक पुष्पक विमान था, हर एक के महल में अलग अलग नौकर चाकर थे, जरा चिंतन कीजिए क्या था और क्या नहीं। जो जिसको कहते हैं अभाव नहीं किसी वस्तु का, वो आपका राज्य था, वो आपका घर था, वो आपका जीवन था। इस छोटे से क्षणभंगुर जीवन में छोटी छोटी उपलब्धि को लेकर कॉलर ऊंचा करते हो, अरे उसको सोचो ना जो भगवान देने आया हथेली पे लेके। तो देही अभिमानी बनना, कल भी मैंने एक बात कही थी कि अपने आप को ये चिंतन करना कि मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूं, मैं कोटों में कोई और कोई में कोई हूं, कितना खुश नसीब हूं कि मुझे परमात्मा ने स्वयं चुना। नो डाउट कि कोई ईस्टर्न से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई दिल्ली से आया है। बाबा भी कहता है मैंने जंगल जंगल की काठी इकट्ठी की है, यहां आकर हम सब एक बाप के बच्चे। तो जब हमारे मनसा में एक भाव आ जाता है कि हम को भगवान ने चुना, तो सामने वाले को भी तो भगवान ने चुना, और हम सब उस एक पिता की संतान है। तो जैसे बाबा कहता है कि 36 अवगुण हैं मगर एक गुण तो है। अच्छा कुछ नहीं नजर आ रहा तो बोला उसकी आंखों ने मुझे पहचाना, ये तो है। मानोगे? मैं इस पर एक बात सुनाती हूं कि आकाश से बूंदें गिरती हैं, एक साथ जमीन पे आती हैं। अब आप देखिए कि चार चीजें हैं, एक बूंद कदली पे गिरी कपूर बन गई, एक बूंद मिट्टी में गिरी मिट्टी में मिल गई, एक बूंद गजमुक्ता जिसको कहते हैं हाथी के मस्तक पर गिरी मोती बन गई, और एक बूंद विषधर के मुंह में गिरी विष बन गई, लेकिन एक बूंद सीपी के मुंह में गिरी मोती बन गई। तो महत्व सबसे ज्यादा किसका है? किसका है? जो सीपी में गिरी, जो मोती बन गई। तो बाबा की उस समय उठी हुई नजर, जिस दिन आप ज्ञान में आए, वो जिंदगी का मिरेकल था। जब आप पहली बार यहां आए, आपके जीवन में परिवर्तन की ख्वाहिश उठी, वो बूंद आपके घट में गिरी, यहां आई। संगत का असर है, बूंद तो वही है। अगर बूंद को हम साइंटिफिकली विश्लेषण करने लग जाएं, तो H2O पानी की बूंद है, वही है, जो तत्व इसमें है वो उसमें। लेकिन असर क्या है? संगत का असर। तो आप सब कितने भाग्यशाली हो कि भगवान की नजरों में आए, भगवान ने आपको चुना, अब भगवान आपको जगा रहा है। हे अर्जुन, चेतना के पट खोल कर रखो। नहीं खोलते हो मत खोलो, अगर नहीं खोलते हो तो याद कर लो महाभारत का वो प्रसंग कि जब अर्जुन ने मार दिया था जयद्रथ को, बोला आप क्या चाहिए, वो भी कृपा उसी की थी, ना सूर्यास्त का दृश्य दिखाते, ना जयद्रथ निकल के बाहर आता, ना अर्जुन उसे मार पाते, वो तो चिता पर चढ़ने जा रहे थे। प्रतिज्ञा के अनुसार यदि मैं सूर्यास्त से पूर्व से नहीं मार पाया तो मैं चिता पर चढ़ जाऊं। और जैसे ही वो आया सामने, सूर्योदय हो गया, मार दिया। बोला और कुछ? उतर आओ पार्थ, चिता पर चढ़ने की जरूरत नहीं। बोला अभी क्या, एक काम कीजिए, मुझे अभिमन्यु से मिलवा दीजिए, पुत्र मोह जागा। बोले चलो वो भी पूरा कर देता हूं। और जब अभिमन्यु के सामने उनको ले गए, कहते हैं अर्जुन हा पुत्र कह के आगे बढ़े, तो अभिमन्यु ने कहा वहीं रुक जाओ पार्थ, न जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे पुत्र बने होगे। मैं एक जन्म में तुम्हारा पुत्र बना तो तुम यहां तक दौड़े चले आए। क्या किया? अंतःकरण के नेत्र खोल दिए, अंतःकरण के नेत्र खोल दिए। तो बाबा ने भी आप सबको क्या किया है? अंतःकरण के नेत्र खोले। ये जो पंच तत्वों की काया है, वस्तुतः माया है, ये पंच तत्वों की जो काया है ये सत्य नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। जो यथार्थ है वो हमारी इस काया के अंदर बैठी हुई चेतना शक्ति है। और जितने क्यों क्या कैसे उठते हैं इस सृष्टि के मंच पर अभिनय करते हुए, जितने भी क्वेश्चन मार्क उठते हैं या जितना भी व्यर्थ उठता है जो हमें खींच ले जाता है देह में, और जिसके पीछे हमको कई बार कहना पड़ जाता है जानते नहीं हूं मैं कौन, मैं तुम्हें समझा सकता हूं तुम क्या हो और मैं क्या हूं। तो ये जब हम बोलते हैं सोचिए, पुनः पुनः बहुत बार जगाना पड़ा केशव को, अर्जुन जागो जागो। बहुत प्रसंग हैं, एक दो नहीं, अगर मैं प्रसंगी प्रसंग सुनाने लगूं तो टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन मुझे कहानी नहीं सुनानी है, अपने आप के चेतना के उस तत्व को पहचानना है, जिसको पहचान कर उन्हें अच्छी तरह समझाया गया कि ये सब मरे पड़े हैं, तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। तो आप सबको भी विश्व कल्याण का कलश भगवान ने मस्तक पर रखा है। विश्व कल्याण से पहले स्व का कल्याण करना है, और स्व का कल्याण करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना उस प्रभु पर। जो कुछ भगवान का है सब आपका है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा है। तुम एक बार मुंह से बाबा कहो, सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार है। बाबा एक बार दिल से कहो। तो अपने को आत्मा जिस दिन हम समझने लगते हैं, मन के अंदर गहराई में अपने चैतन्य स्वरूप को स्थिर कर लें, उसको पक्का कर लें कि मैं आत्मा हूं, जैसे हमारे आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने, उन्होंने भी बाप की तरह पाठ बजाया था, लेकिन प्रारंभ में उन्होंने 20 जगह कम से कम 200 पेज भर दिए होंगे लिख लिख करके कि मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, भाऊ आत्मा है, दीदी आत्मा है, दिन भर कार्य संचालन में व्यवहार में आने वाले यज्ञ वत्सों को बाबा ने वो आत्मा है मैं आत्मा, वो आत्मा है मैं आत्मा। तो ये जो आत्मा का पाठ बाबा ने बार बार लिखा, क्यों लिखा? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ये देह लेते लेते 63 जन्म हम खुद को देह समझ बैठे, और ये आदत जाती नहीं। हम लाख समझ लें कि हम भूल गए हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अरे बहुत पीछे छोड़ा है, पुरानी दुनिया की बात है, हम तो कभी जुबान पे भी नहीं लाते। हम लोग सोचते ना ऐसा, हम तो कभी जुबान पे भी नहीं लाते कि हम शरीर हैं, या हम फला अधिकारी हैं, या हम फला व्यापारी हैं, ये तो वर्षों पुरानी बात हो गई, हम भूल गए। लेकिन सच पूछिए, कुछ भूलता नहीं है। कहीं अंदर मन के किसी कोने में ये बातें पड़ी ही रहती हैं। बाबा जैसे हमेशा कहता है ना कि इतनी योग की अग्नि जलाओ जलाओ, भस्म कर दो इस एहसास को, लेकिन भस्म नहीं होता हमसे, क्योंकि हम उतना योग नहीं करते, थोड़ा करते हैं, थोड़े से भाग खड़े होते हैं। तो सचमुच इस मन को चैतन्य, बुद्धि को दिव्य, और क्या करेंगे, वाणी को मधुर और कर्म को रूहानियत में ढाल दें तो आत्मिक स्वरूप ले सकते हैं। तो मन की चेतना में ये भरना, मुझे 1960 से 2024 हो गया, और मैं बड़ी खुश कि मैंने कहा, अरे वो पुरानी जिंदगी की कभी चर्चा ही नहीं करती, कभी मैंने आज तक किसी को नहीं बोला है कि मैं किस परिवार से हूं, किस खानदान से हूं, कितने लोग आगे पीछे लगे रहते थे, भूल गई मैं, कभी जिक्र नहीं किया और करती भी नहीं। पता नहीं कहां से खड़ी हुई थी एक जगह, और सामने वाले ने ये कहा कि बहन जी मैं इतना साधारण भी नहीं हूं, मेरे मामा जी की हवेली है यहां प्रयाग में ही, ऐसा है वैसा है। तो बात के प्रति उत्तर में मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया और वही प्राचीन बात कि मेरे यहां इतने बड़े तालुके की जमींदारी थी और घी के दीपक जलते थे, 50 आदमी बाहर पड़ा रहता था, मैं झोला लटकाए घूम रही हूं सफेद कपड़े पहन के, इसका मतलब। लेकिन वो बात जो मुंह से मेरे उतनी सी निकल गई, मुझे बेहद कष्ट हुआ बाद में। 12 घंटे दिन और रात चिंतन चला और अपने आप से पूछती रही, तुम मरी नहीं क्या अभी तक? एक ही बात पूछती रही, तुम मरी नहीं अभी तक? कहां से जिंदा हुई और कैसे तुम्हारे मुंह से ये निकला? और हम तो बहुत जल्दी म्यान से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, जहां भी किसी ने हमको चैलेंज भरी बात कही और हम म्यान से बाहर तत्काल बताना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने युक्तियां भी बताई, ऐसा नहीं बहुत टफ नहीं है ये टास्क, इतना टफ नहीं है कि हम अपने को निरंतर आत्मा न समझ सके। लेकिन आत्मा निरंतर समझने के लिए पहली शर्त है प्रभु से प्रीत होनी चाहिए। पहली शर्त इतनी प्रीत होनी चाहिए कि सिवाय उसके कुछ दिखाई न दे। प्रीत ही वो नशा है जिसमें दीन दुनिया स्वयं सब कुछ भूल जाता है इंसान। अगर प्रीत का नशा सच्चा नहीं है तो परिवर्तन इतना आसान नहीं। पहली चीज है उस प्रभु से प्रीत करनी आनी चाहिए। हमारे भाइयों का विवेक बहुत जागृत होता है, वो कहते हैं बस प्रीत से ही काम चल जाएगा। अरे बहन जी पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, कहते हैं ना, बेशक पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, लेकिन प्रीत की रीत भी निभानी आनी चाहिए। बहनों को बाबा ने कहा है कि बहुत कठिन पथ पर नहीं चलना, बहुत परेशान नहीं होना, हो चुके जितना होना, खूब कह चुके भगवान को कि मैं मूरख खलकामी कृपा करो भरता, हम खूब कह चुके कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ हो सब तुम्ही हो। लेकिन बाबा ने अब हमारा दास्य भाव छुड़ा दिया, अब बाबा हमसे प्रीत करना सिखाता है। और प्रीत करने में जब हम उस पर बलिहार जाते हैं तो ना कुछ मैं और ना कुछ मेरा। हमारे इस यज्ञ में दादियों ने प्रीत निभाई, बड़े फक्र से कहूंगी दादी जानकी को, जो सदैव कहा करती थी दो ही बातें याद रखो, मैं कौन मेरा कौन। और कभी कहती थी ना कुछ मैं ना कुछ मेरा। हाँ? तो वो भाव बाबा भी कहता है, भगवान के साथ भगवती होकर बैठो, कुछ मत करो। मैं दासी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं प्रभु तुम्हारे दरवाजे का चाकर हूं, ये भी कहा गया, मुझे चाकर समझने आ। तो नहीं, बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो। एक छोटी सी बच्ची को भी बुद्धि है, उसको उसके पिता ने एक बार कहा, पिता से कहा बच्ची ने कि ये लकड़ी का पुल है, आप मेरा हाथ पकड़ लें। तो उसके पिता ने कहा नहीं तुम मेरी उंगली पकड़ लो। बोला नहीं मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, छूट गई तो। आप मेरा हाथ पकड़ लो ना तो आप नहीं छोड़ोगे और मैं पार हो जाऊंगी। पुल हिलता है मुझे डर लगता है, तो वास्तव में ये देह अभिमान के पुल पर हम चढ़े हुए हैं और ये हिलता है, तो देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर परम चैतन्य का हाथ पकड़ लो, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। पक्का वायदा है भगवान का कि मैं अपने शरण में आए हुए को कभी नहीं त्यागता हूं। गीता में ही नहीं है, रामायण में भी है। कोटि बध हो, कोटि पाप लगे हो, तो भी मेरे सामने जब आता है तो मैं उसे मुक्त कर देता हूं। रामायण में, सुंदरकांड में कई जगह वर्णन है। जिस समय विभीषण आया था तो उसने कहा था, तामस तन कछु साधन नहीं, मेरा तो तामस तन है, कुछ साधन भी नहीं है, मैं आपका नाम लूं तो कैसे लूं, कभी नहीं ले सका। तो उनका कोई हर्जा नहीं है, तुम निर्मल मन से आए हो और निर्मल मन से जो मेरे सामने आता है मैं उसे सहज स्वीकार कर लेता हूं। तो हम जब निर्मल मन से बाबा के बन जाएं और उसको अपना हाथ पकड़ा दें तो वो छोड़ेगा नहीं और हमें आत्मा बनने में देर लगेगी नहीं, क्योंकि देह से नहीं याद करना उसको, किससे याद करना है, आत्मा से याद करना है। तो पहली चीज प्रीत, दूसरी चीज मीत। जो मीत है वो एक होना चाहिए, अनेक नहीं होने चाहिए। या तो इस संसार में लगाओ या उस परमेश्वर में लगाओ। तो जब प्रीत का आधार वो परम परमेश्वर सर्वशक्तिवान बन जाता है तो उसके पास, उसकी समीपता के लिए, उसे हाथ पकड़ाने के लिए हमको इस देह से न्यारा होना पड़ता है। बाबा बहुत बार कहता है कि बच्चे तुम मेरे दिल तख्त पे आके बैठ जाओ। मधुबन में तो एक बार निश्चित संख्या मिलती है, यहां आ जाओ, यहां कोई समय का बंधन नहीं, और बहुत बड़ी जगह है मेरे पास, बहुत बड़ा दिल है, दिल तख्त नसीन बनो। हम में से कौन है जो नहीं चलना चाहता वहां, सब उसके दिल पर चढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे पैरों में देहभान की मिट्टी होगी तो क्या हम चढ़ सकेंगे? नहीं ना, नहीं चढ़ सकेंगे। तो इस मिट्टी को धुलना बहुत जरूरी और बहुत, इसी में हम मुश्किल अनुभव करते हैं। एक बार अपने बड़े अनन्य भाई हैं, युगल सहित हैं, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनकी युगल ने उनसे कहा, सुनिए मैं लिफाफा तो वहीं भूल आई जो दीदी को देना है। तो वो तुरंत नाराज हुए, भौ में गांठ पड़ गई, कुछ कुछ बोले भी, और दीदी बैठी हुई थी ट्रेन के डिब्बे में और दीदी को सुनाई दे गया कि गुप्ता भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, कहा गुप्ता जी इधर आओ, और उसके बाद पूछा तुम क्या कह रहे थे? चुप हो गए, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहा था। नहीं बोले कुछ तो कह रहे थे, बोले नहीं नहीं दीदी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आप सच बता दो, मैंने देख लिया है। तब थोड़ा सा अंदर से बाहर आए, अरे समझती नहीं है, नुकसान कर दिया, लिफाफा रखा था वहीं भूल आई है। कहा कोई बात नहीं, अभी वक्त है, तुम जाके ला सकते हो। बोले ले तो आऊंगा, यही बात उसको समझा रहा था। तो दीदी ने कहा तुम क्या समझा रहे थे वो बताओ, और किसको समझा रहे थे वो बताओ। बड़ा बारीक पकड़ थी। बोला तुम्हारा तेवर बता रहा था कि तुम आत्मा से नहीं अपनी युगल से बात कर रहे थे। अगर इसी जगह दीदी होती तुम्हारी सेंटर की और वो कहती कि गुप्ता भाई साहब मैं वहां वो छोड़ आई हूं जरा ले आओ, तो बोला तब क्या करते? कहते जी दीदी मैं ला रहा हूं। होता है ना ऐसा कि हम दीदियों को ना नहीं करते, कुछ कहते भी नहीं है और कहते कोई बात नहीं अभी दौड़ के ले आएंगे। तो बोला वो युगल थी इसलिए तुम उसको नाराज हो रहे। इसका मतलब तुमने अभी तक बाबा को अपनी युगल नहीं बनाया, तुम युगल को युगल समझते हो। समझना आप बात कि जैसे बाबा ने लिखा है, कॉपियां भरी हैं, हमें भी अभ्यास करना होगा। वक्त हमारे पास बहुत कम है, संगम युग पूरा हो रहा है, चला चली का वक्त है, अब घर जाने का वक्त है, संपन्न बनने का वक्त है, संपूर्ण होने का वक्त है। बाप दादा की उंगली पकड़ के पुले सिरात को पार हो जाने का वक्त है। पुले सिरात कहते हैं कुरान पाक में, एक पतला सा बाल के बराबर पुल है, अगर आप पार हो गए तो जन्नत है, अगर गिर पड़े तो दोजख ही है। बिल्कुल ये इतना सा माइनर फर्क है, पतली सी लाइन है, और हमारे बड़े बड़े विकारों को तो हम आते ही छोड़ देते हैं, पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन, तीसरे दिन नहीं तो सातवें दिन छोड़ ही देते हैं। लेकिन शतांश ये कहीं रह जाते हैं, और क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कई अर्थों में हमें देहभान रह जाता है। जब तक हमारी बुद्धि दिव्य नहीं बनेगी, जब तक वो लगाम टाइट नहीं होगी, तब तक नैनों में वो नूर और रूहानियत नहीं आएगी, तब तक हमारी वृत्ति में वो जज्बा नहीं आएगा। वृत्ति से तात्पर्य ही होता है मन में उठने वाले विचारों का गोलाकार व्रत संचय। सुबह से शाम तक जो चिंतन करते हैं वो व्रत बनते हैं, और उसी अनुसार हमारी वृत्ति बनती है। तो वृत्ति में ये लाने के लिए कि मैं आत्मा हूं, मेरा मीत परमात्मा है, मुझे प्रीत उससे निभानी है, और तीसरी चीज है गीत। जब भी कोई पुराना मित्र मिलता है तो कब वक्त गुजर जाता है हमको पता ही नहीं पड़ता, हम घंटों प्रहर गुजार देते हैं उससे बात करने। उसकी जिक्र भी अगर हो जाए, वो ना सामने हो, तो चर्चा करने में दिन गुजार देते हैं। तो हमारा मीत, हमारा प्रीत और उसके गीत अगर हम गाने सीख जाएं, तो रीत तो बहुत सहज है। इस क्षण भंगुर काया का क्या मूल्य है, ये केवल माध्यम है। किस पर नाच कर रहे हो बता दो, अगर कोई आपके पास स्थाई चीज हो, किस पर नाच कर रहे हो? यक्ष ने यही प्रश्न पूछा था ना, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य, बोला क्षण भंगुर वस्तुओं से लगाओ, ये आज है कल नहीं रहेगा, फिर भी दुनिया में इससे प्रीत बहुत है। तो जब हम इस संसार को नश्वर रूप में देखते हैं, जब ये समझते हैं कि ये स्थाई नहीं है, ये क्षण भंगुर है, ये आज है कल नहीं रहेगा, तो जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या समझते हैं कि अभी बहुत साल है? हाँ चलेगा, कुछ दिन तो चलेगा ही, 2040 तक, 2050 तक, हाँ, या सेंचुरी पूरी कर लेंगे। हालात जो हम देख रहे हैं, जो भविष्यवाणियां चारों ओर हवा में फैल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो वैश्विक युद्ध धरातल पर छिड़े हुए हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आ रही हैं, क्या हम अभी भी सोचें वक्त बहुत है? वक्त हमारे हाथ से बालू की तरह फिसलता जा रहा है। तो अपने को जब निराकार समझेंगे, चैतन्य आत्मा समझेंगे, तभी निर्विकार हो सकेंगे, तभी निरहंकारी हो सकेंगे, तभी हम जीवदान किसी को दे सकेंगे, तभी हमारी दृष्टि में रूहानियत होगी, वाणी में माधुर्य होगा, मन में वृत्ति में शुभ भावना शुभकामना होगी और कर्मों में एक दूसरे को सहयोग देने का भाव होगा। नहीं तो आने वाले वक्त में हम जिस मुसीबत में होंगे, शायद ही कोई मुसीबत में हो। ये मत सोच लेना कि किसी को आए हुए शरणार्थी को आश्रम का पता देके भेज दोगे। अगर कोई कष्ट में आया है, आपका दरवाजा खटका रहा है और आप उससे कहो भाई आश्रम चले जाओ, वो तुम्हारे इस बच्चे पर दीदी है हाथ रख देंगे तो इसका ये दर्द दूर हो जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। नहीं जाएगा, वो कहेगा बाबू साहब बाहर कर्फ्यू लगा है, बाहर जा नहीं सकते, आप हाथ रख दो ना। क्या कहोगे, हमारे पास स्टॉक नहीं है शक्तियों का? क्या कहोगे, हमने तो इतना योग लगाया ही नहीं है? ये मत सोचो कि कौन जानता है कि मैं वहां जाता हूं, रोज सत्संग करता हूं। दुनिया जानती है, दुनिया के आईने में आपकी तस्वीर लगी हुई है कि आप सुबह 6 बजे उठ करके स्कूटर से आश्रम जाते हैं। पूछ लो किसी मोहल्ले में रहने वाले किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी को, बोले हाँ हमारे यहाँ है तो वो लोग सुबह सुबह जाते हैं कहीं। तो उस समय वो आश्रम नहीं जाएगा, वो आपसे कहेगा जरा सा हाथ रख दीजिए, इसका दर्द दूर हो जाए। क्या करेंगे आप सब? जो बाबा कहता है निरंतर अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और हम कहते हैं कर लेंगे ना थोड़ा, भी अभी तो चैन से जीने दो, अभी तो शांति है, अभी क्यों शोर मचा रहे हो? लेकिन जब शोर हो रहा होगा तो शांति नहीं हो पाएगी। घर के दरवाजे पर खूने नाहक खेल हो रहा होगा। बाबा ने कहा है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जिस तरह विभाजन के समय खूने नाहक खेल देखा था, रात रात भागते थे लोग, दिन दिन भागते थे और गंतव्य नहीं मिलता था, छुपते हुए भागते थे, रास्ते में बिछुड़ जाते थे, शिकार हो जाते थे। आने वाला वक्त भी ठीक ठीक वैसा ही अभी रिपीट होगा। और उस समय हम सोचें कि हम योग लगा लेंगे, क्या ये पॉसिबल है? बाहर बहुत जोरों से आवाज हो रही हो, शोर हो रहा हो और कोई किसी को मार रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो आवाज आ रही है बचाने की, ये मेरे ही किसी प्रिय की है, मेरे आश्रम पर आने वाले की है, मेरे भाई की है, मेरे पड़ोसी की है, आप चाह के दरवाजा नहीं खोल सकते। खोल सकते हो? अच्छा, अगर आप कहोगे उस समय बैठ के योग लगा लेंगे, लग जाएगा। जब बमों के विस्फोट हो रहे होंगे तो उन गरजती हुई आवाजों के बीच में योग लगेगा। हमें कली दीदी ने समझाया है कि शोकेस का सैंपल बनना है, तो शोकेस का सैंपल वो होता है जिसमें इतनी भी डस्ट ना हो, शोकेस का सैंपल वो होता है जिसमें परफेक्शन हो, शोकेस का सैंपल वो होता है जिसमें अट्रैक्शन हो। शोकेस का सैंपल कौन हो सकता है? आपको सैंपल बनना है ना, तो सैंपल बनने से पहले, मैं तो कहूंगी इस भट्टी से भी पहले, मुझे स्वयं को सहज आत्मनिश्चय करना है, क्योंकि जीवन का यथार्थ सत्य है मैं आत्मा हूं। और जिस चीज पर मुझे नाज है, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा है और वैसा है, ये सब यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। चाहे अभी मान लो, चाहे जब प्रैक्टिकल आए तब मानना। तो हमको इसका अभ्यास करना, चलते फिरते उठते बैठते, हमें दूसरे को देखना ही नहीं। और जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमारे मन में उस दूसरे के लिए बहुत दूसरे दूसरे भाव आते हैं। जब भी हमारे मन में आता है कि हम किसी को देखते हैं और ये सोचते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया था, कभी कहीं सेवा पे जाना होता है और बहनें कह देती हैं कि बहन ऐसा करो कि आप दो बहनें चली जाओ और फला भाई को ले लो, और वहाँ सेवा है, एग्जीबिशन है, आप निकल जाओ, वहाँ सेवा करनी है। हम कुछ कह भी नहीं पाते, सह भी नहीं पाते, बोला उस भाई को मत भेजना, वो ठीक नहीं है। हम बहन को नहीं बोल पा रहे हैं, हम धीरे से बोलते हैं कोई और भाई नहीं है दीदी, या जिस बहन को कह रही है उससे हमारे संस्कार नहीं मिलते, तो हम कहते हैं, सोचते हैं कोई और बहन नहीं है, कहाँ भेज रही है। हम सेवा पर चले जाएंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन साथ ही तो बदल दो ना, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अगर दम रखते हैं तो कह ही देते हैं, और अगर दम नहीं रखते हैं तो हम नहीं कह पाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे संस्कार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? भगवान ने चुन लिया, अपना बना लिया, वो भी भगवान का बच्चा है, मैं आज तक नहीं समझ पाई इस बात को, मैं आज तक नहीं समझ पाई कि है तो मेरा ही भाई ना, हम भी संपन्न कहाँ हो गए, हम भी संपूर्ण कहाँ हो गए। अगर उसमें ये कमी है तो उसमें अच्छाइयां भी तो होंगी। अर्जुन को डांट फटकार के उतर जाते हैं श्री कृष्ण, हाँ ऐसा नहीं किया उन्होंने, उन्होंने क्या कहा, अर्जुन बड़ी मूर्खता कर गए हो, हाँ मक्खन तो वो लिए जा रहा है, 18 छौनी सेना उसके साथ है, तुम तो केवल छाछ पाए हो, मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और मुझे ले लिए हो। तो अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, मैं मक्खन नहीं लेकिन मक्खन चोर को ले जा रहा हूं, मक्खन तो मिल ही जाएगा। सोचिए, ले जाने तो मुरली, लेकिन मैं मुरलीधर को ले जा रहा हूं। तो जब हम भगवान की मुरली अर्थात श्रीमद, उसका मंथन करके अपने को आत्मिक निश्चय में स्थापित करते हैं, हम हैं ही आत्मा, हमारा ओरिजिनल ट्रुथ है, तो जो आत्मा के स्वाभाविक गुण है, प्रेम, आनंद, कल्याण, पवित्रता, शांति, स्वयमेव इनकी सरिता प्रवाहित होने लगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे मैं बहुत परेशान हूं, बहुत डिस्टर्ब हूं, अब तुम तो कम से कम मुझे डिस्टर्ब मत करो, फिर ये नहीं कहें। बाबा ने हमको बहुत सारी मुसीबतों से छुड़ा दिया, सब तज एक भज, आज सुबह आप मुरली सुन रहे थे ना, तो एक ही आदमी को 63 जन्म में जितने रोल करने पड़े वो तो करने पड़े ही, लेकिन एक दिन में कितने रोल करने पड़ते हैं, कहीं पुत्र है, कहीं पिता है, कहीं अधिकारी है, कहीं व्यापारी है, कहीं कुछ है, कहीं पति है, सोचिए आप, कहीं मित्र है, कहीं नेता है, कहीं अभिनेता है, एक ही दिन में दस तरह के डायलॉग बोलने पड़ते हैं, जो कि परिवर्तनशील हैं, तटस्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है, लेकिन ये मैं आत्मा हूं ये यथार्थ भी है, अविनाशी भी है, अपरिवर्तनशील भी है। ये कभी नहीं बदलेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं उस जगत नियंता की संतान हूं और मेरे अपने नैसर्गिक गुण मेरे अंदर हैं। चलिए योग करते हैं।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में अब तुम्हें आना है।